अवलोकं सहनौ भुनक्तु
सवित्रं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
अर्जुन का सातवां प्रश्न था, प्रयाण काले च कथम गेय असि नियत आत्मभी। नियत आत्मभी मतलब जो उसका चित्त योग में लगा हुआ है, युक्त चित्त वाला, युक्त चित्त वाला पुरुषों द्वारा अंत समय किस प्रकार जानने में आता है, भगवान कैसे जाने जाते हैं। तो भगवान जो है पांचवें श्लोक से लेके उसका उत्तर देना शुरू करते हैं और कहते हैं देखो एक साधारण नियम है। साधारण नियम क्या है कि आप प्रयाण काल में जब आप शरीर को छोड़ते हैं उस वक्त जो आपकी वृत्ति होती है, जो भाव होता है, उस भाव से आप वहां पहुंचते हो। अगर आपका भाव है कि हम जो है अपने गांव पहुंच जाएं, भारत पहुंच जाएं, वहां पहुंच जाओगे। या हमको अपने जो है घर की रक्षा करनी है तो वहां पर जन्म हो जाएगा, घर की रक्षा करो आप। तो जैसा आपका भाव होगा ऐसी जगह पर आप पहुंच जाओगे। तो भगवान कहते हैं अगर मेरे पास आना है तो आपको क्या करना होगा, कि सदा हमारा स्मरण करते रहो, सदा हमारा स्मरण करते रहो और अपने कर्तव्य कर्म करते रहो। दो चीजें बताई हैं, अपने कर्तव्य कर्म करते रहो, कैसे करते रहो, भगवान ने तरीका बताया। हम तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय, पांचवे अध्याय में सब देख चुके हैं कि कैसे हमें अपने कर्तव्य कर्म करने हैं। अपने कर्तव्य कर्म करते रहो और मेरा अनुस्मरण करते रहो, मेरा चिंतन करते रहो, मेरा नाम स्मरण करते रहो तो आप मेरे पास पहुंच जाओगे। तो इसका क्या करना होगा, अभ्यास करना होगा। तो भगवान जो है उनके पास पहुंचने के लिए तीन उपासना बताते हैं, इसको हमने विस्तार से आगे देख लिया है। पहली उपासना के अंदर जो है राजयोग और भक्ति का समन्वय है, वहां अभ्यास करने को भगवान ने कहा, पुरुष के लक्षण बता दिए। ये आपका श्लोक 8, 9 और 10 के अंदर बताया गया। उसके बाद 11, 12, 13 श्लोक में भगवान ने दूसरी उपासना बताई जिसके अंदर राजयोग प्लस उपासना प्लस ओंकार का आलंबन लेना है। पहली उपासना में कोई आलंबन नहीं था, दूसरी उपासना के अंदर दोनों में ही राजयोग एक है और उसके अंदर ओम का आलंबन हम दूसरी उपासना में लेते हैं। फिर तीसरी उपासना 14वें श्लोक में भगवान ने बताई कि अगर आप शुद्ध भक्ति मार्ग पकड़ लो, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सह, सततम का मतलब निरंतर और नित्य सह का मतलब होता है दीर्घ काल तक, दीर्घ काल तक हमारा स्मरण करते रहो। ऐसा नहीं सोचना एक साल हो गया, दो साल हो गया, पांच साल हो गया, दस साल हो गया, कुछ नहीं हुआ, नहीं नहीं काम हो रहा है। हमको अपना जो है दीर्घ काल तक निरंतर जो है अनन्य चेतना मतलब जो है माए दूसरी जगह ना आ जाए। नित्य से तस्याम सुलभ, उसके लिए मैं एकदम सुलभ हूं, एकदम सुलभ हूं, कोई राजयोग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सवेरे शाम प्राणायाम करते रहो, आसन पकड़ के रहो, अब ये पद्मासन में बैठो, अब मयूर आसन में बैठो, कुछ नहीं करना है, केवल मेरी भक्ति करो, तो मैं सुलभ हूं। नित्य युक्त योगिन है, जो नित्य युक्त इस तरह से है उसके लिए मैं जो है बहुत सुलभ हूं। अच्छा, फिर भगवान कहते हैं कि आपके सुलभ हो जाने से क्या होगा, आप अगर सुलभ हो गए तो क्या मिलेगा, इसमें कौन सी 30 बार खां की बात हो गई। तो भगवान कहते हैं माम उपेत पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम ना आपनुवंती, फिर से आपका जन्म नहीं होगा मेरे पास आ जाने से। मेरे पास आ जाने से आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये पुनर्जन्म कहाँ होता है, दुखालय में। इस संसार को भगवान कहते हैं ये दुखालय है, और कैसा है, अशाश्वतम, ये जो है नित्य नहीं है, ये बराबर बदलता रहता है, नश्वर है। महात्मा ना संसिद्धि परमाम गता, ऐसे लोग क्या होते हैं, उनको परम सिद्धि मिल गई, मोक्ष मिल गया उनको, जो भक्ति मार्ग से हमारे पास आना चाहते हैं। तब प्रश्न उठता है तो क्या भगवान आपके सिवा अन्य स्थान को प्राप्त होने वाले पुरुष फिर संसार में आते हैं, केवल आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास पहुंचने से पुनर्जन्म नहीं होता है कि और भी कोई स्थान है। तो भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ओ अर्जुन, ब्रह्म लोक तक जाने वाले जितने भी साधक हैं वो सारे के सारे वापस आने वाले हैं ब्रह्म लोक तक। आ ब्रह्म भुवना लोका, भुवन मतलब जहां पर जीव उत्पन्न होते हैं रहते हैं उसको भुवन कहते हैं। तो ऐसी जगह में ब्रह्म लोक तक भी अगर आप पहुंच जाओ तो ब्रह्म लोक के नीचे क्या है, भू भू स्व महाजन तप सत्यम, सत्यम ये ब्रह्म लोक। तो ब्रह्म लोक तक पहुंच के भी आपको वापस आना है। माम उपेत तो कौन थे या पुनर्जन्म विद्यते, मगर मेरे पास हो गए तो पुनर्जन्म नहीं है, अदरवाइज पुनर्जन्म है। मेरे को छोड़कर आप दूसरे किसी जगह भी जाओगे तो वहां से आपको फिर से वापस आना है। अच्छा भगवान, आप ब्रह्म लोक सहित समस्त लोक को पुनरावर्ती किस कारण से कहते हैं, क्या कारण है। तो भगवान कहते हैं कि ये सारे के सारे काल से परिच्छिन्न है और मैं काल से परिच्छिन्न नहीं हूं, मैं काल से परिच्छिन्न नहीं हूं, काल में सीमित नहीं हूं। ब्रह्मन जो है वो काल के अंदर नहीं है, ब्रह्मन का ना जन्म हुआ है ना मृत्यु होती है, तो वो कालातीत है। और बाकी जितनी भी चीजें हैं अप टू ब्रह्मलोक, अप टू ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का भी जीवन जो है 100 वर्ष का है, वो भी काल में सीमित है। तो भगवान कहते हैं सारे के सारे काल में सीमित हैं। फिर भगवान कहते हैं सहस्त्र युग परत महर यत ब्रह्मनो विदु, जो ब्रह्मा जी का जो है एक दिन कैसा है, तो बोले 1000 चतुर्युग के बराबर उनका एक दिन होता है 12 घंटे, और रात्रि युग सहस्त्रान अंतम ते अहो रात्र विदो बजाना, और उनकी रात 12 घंटे वो भी 1000 चतुर्युग होता है। ये सब हमने विस्तार से देख लिया। तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे 1000 चतुर्युग, ब्रह्मा जी की 1 रात्रि 1000 चतुर्युग, इस तरीके से ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं, 100 साल होते हैं। तो उनकी उनका जीवन भी जो है सीमित है, लिमिटेड है। अच्छा, अब प्रजापति या ब्रह्मा जी के दिन में और रात्रि में जो कुछ होता है उसका वर्णन भगवान ने किया 18वें श्लोक में, क्या होता है दिन में रात में क्या होता है। तो यहां कहते हैं अव्यक्त अव्यक्तात् व्यक्तः सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे, जो पहले अव्यक्त थे वो व्यक्त हो जाते हैं दिन के शुरू में। जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है तो जितने भी प्राणी हैं, कौन कौन से प्राणी, स्थावर जंगम लक्षणा, स्थावर जंगम रूप समस्त प्रजाएं उत्पन्न हो जाती हैं, स्थावर पेड़ पौधे स्थावर हैं, जंगम मूविंग पशु पक्षी ह्यूमन बीइंग सब जो है ये मूविंग है। तो जितने भी प्राणी हैं वो स्थावर हो या जंगम हो वो सब के सब उत्पन्न हो जाते हैं और सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से अपने आप फल भोगने शुरू करते हैं। और रात्रि आगमे, जब रात्रि होती है ब्रह्मा जी की, तो क्या होता है, वो सारे के सारे फिर अव्यक्त हो जाते हैं। जैसा हम लोग देखते हैं हम लोग की रात्रि में क्या होता है, जैसे हमारे रात दिन में होता है वैसे ही उनके यहाँ भी होता है। हमारी रात्रि में क्या होता है, सब कुछ लीन हो जाता है, जगत नहीं है, कुछ नहीं है, न हमारा स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, सबका सब जो है कारण शरीर में चला जाता है। आप लोग जानते हैं कारण शरीर क्या है, कारण शरीर के अंदर सब पहुंच जाता है। और जब सवेरा होता है फिर कारण शरीर से फिर व्यक्त हो जाता है सब कुछ। हम जब जागते हैं सब हमको याद रहता है, पिछला पिछले दिन का सब कुछ याद रहता है, कुछ नहीं बदलता है, मगर रात में सब अव्यक्त हो गया, कुछ नहीं है, फिर व्यक्त हो जाता है। फिर भगवान कहते हैं इस प्रकार आप जो कहते हैं, क्यों कहते हैं, बोला आपको वैराग्य हो जाए, इस वास्ते हम कहते हैं। ये जो है भूत ग्राम सब स एवायम भूतवा भूतवा परिलियते रात्रागमे अवसर पार्थ प्रभति अहरागमे, बोले ये चलता ही रहता है बराबर। रात होती है, दिन होता है, रात होता है, दिन होता है, जो जो पहले कल्प में था वही दूसरा नहीं, जो पहले कल्प में था दूसरा नहीं। जैसे रात में हम सोने जाते हैं तो हम जब सुबह उठते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति नहीं बन जाते हैं, जो हम थे वही रहते हैं। उसी तरह ब्रह्मा जी की रात्रि में जो अव्यक्त हुए, जब व्यक्त होते हैं वो पहले वाला स्टॉक है, कोई नया नया नहीं उत्पत्ति होती है, पहले वाले ही प्राणी वापस आते हैं। यह स्थावर जंगम रूप भूतों का समुदाय ब्रह्मा के दिन के आरंभे बारंबार उत्पन्न होकर दिन की समाप्ति और रात्रि के प्रवेश होने पर पराधीन हुआ भी बारंबार लय होता जाता है, इस प्रकार विवश होकर दिन के प्रवेश काल में पुनः उत्पन्न होता रहता है। तो ये चलता जा रहा है। अब पता नहीं हम लोगों ने कितनी करोड़ों बार जन्म लिया है, करोड़ों बार जन्म हम लोगों ने लिया है, और चलता ही रहता है। अच्छा, तब भगवान कहते हैं मैं आपको और बताने वाला हूं कि जो माम उपेत्य जो है उसका विश्लेषण भगवान और ये 20वें और 21वें श्लोक में करेंगे। माम उपेत्य, मेरे को पाकर, मैं कौन हूं, अपने बारे में उसका और विश्लेषण देंगे। या जो ओम इति एक अक्षरम जो 13वें श्लोक में आया है उसका स्वरूप बतलाएंगे। योग मार्ग से वह प्राप्त होता है, भक्ति योग मार्ग से वह प्राप्त होता है, उसका स्वरूप बताने जा रहे हैं 20वां श्लोक।
परस्तस्मात्तु भावोन्यः
परस्तस्मात्तु भावोन्यः
अव्यक्तो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः
अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः
यस्स सर्वेषु भूतेषु यस्स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति नश्यस्तु न विनश्यति परस्तस्मात्तु भावो नः अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति।
तू, देखो तू एक वर्ड उसमें आया है, तू मीन्स परंतु। भगवान कहते हैं देखो सोचो इसको, एक चीज और बताने जा रहे हैं भगवान। परंतु तस्मात, तस्मात माने उस कौन सा अव्यक्तात्, जो अभी व्यक्त और अव्यक्त की हम बात कर रहे थे वो प्रकृति के अंदर है, प्रकृति के अंदर है। उस अव्यक्त से अव्यक्तात् फिर क्या होता है, परह, परह माने परे, उससे भी परे अन्य एक दूसरा, दूसरा क्या है, यह जो, वो कौन है भाई, तो भगवान कहते हैं कि वो अव्यक्त है, वो अव्यक्त जो है, एक अव्यक्त था प्रकृति का, एक दूसरा और अव्यक्त है, वो कौन है, वो अव्यक्त। अच्छा, तो भगवान कहते हैं भाव, वो अव्यक्त भाव है। सह व दिव्य पुरुष सर्वेशु भूतेषु सारे भूतों में, नश्यत्सु जब वो नष्ट हो जाते हैं, न विनश्यति वो नष्ट नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता। परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, एक सनातन अव्यक्त है, दूसरा सनातन नहीं है, सनातन मतलब नित्य है। तो अव्यक्त दो हुए, एक प्रकृति का अव्यक्त, दूसरा जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, परमात्मा है, वो भी अव्यक्त कहलाता है। वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, नष्ट नहीं होता। तो यहां पर भगवान बताने जा रहे हैं कि माम उपेत्य, मैं कौन हूं, कि जिस ब्रह्म को ओम इति एकाक्षर ब्रह्म कहा, अब उसी ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान बताना चाहते हैं कि योग द्वारा आप कहां पहुंचोगे, प्रकृति वाले अव्यक्त में या निर्गुण निराकार ब्रह्म में, जो भी वो भी अव्यक्त है, वे व्यक्त नहीं होता, ब्रह्मन कभी व्यक्त नहीं होता, वो भी अव्यक्त है। एक अव्यक्त वो है जो ब्रह्मा की रात्रि में होता है, हम सब अव्यक्त हो जाते हैं, और दूसरा अव्यक्त वो ब्रह्मन है, वो ब्रह्मन है। जैसे व्यष्टि की नींद में हमारा मन कारण शरीर में लीन हो जाता है, उसी तरह जब ब्रह्मा जी सोते हैं तब क्या होता है, उनका भी समष्टि मन है, उनका भी समष्टि मन है। वो समष्टि मन कहां जाता है, वो उनके कारण शरीर में चला जाता है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, जब हम सोने जाते हैं तो हमारा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में अव्यक्त हो जाता है, रोज रात को ऐसा होता है। मगर कारण शरीर भी प्रकृति ही है, प्रकृति के अंदर है। ठीक उसी तरह ब्रह्मा जी की नींद में जब वो सोने जाते हैं तो समष्टि मन कहां जाता है, कारण शरीर के अंदर अव्यक्त हो जाता है, वो भी जो है प्रकृति है। मगर वो प्रकृति किसके ऊपर आरोपित है, उसका आधार क्या है, वो आधार जो है वो ब्रह्मन है, वो अव्यक्त है। तो अव्यक्तात परे अव्यक्त है, एक वो जो है प्रकृति का जो अव्यक्त है उसके परे दूसरा अव्यक्त है, भगवान ये बताना चाहते हैं। और वो व्यक्त क्या है, बोलो समष्टि कारण का जो है वो आधार है, समष्टि कारण का, ब्रह्मा जी का भी आधार है, हिरण्य गर्भ का भी आधार है। वो ब्रह्मा जी क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ब्रह्मा जी का एग्जिस्टेंस कहां से आया है, उस ब्रह्मन से आया है, सच्चिदानंद से। सच्चिदानंद है तब तो फिर ब्रह्मा जी हैं और सब कुछ है, सच्चिदानंद है तब माया है, सच्चिदानंद नहीं है तो माया नहीं है। तो वो सच्चिदानंद जो है अव्यक्त है, और वो अव्यक्त जो है अधिष्ठान है, सबस्ट्रेटम है, सबका आधार है। वो अव्यक्त कैसा है, वो ये सर्वोच्च है। अब जिस अव्यक्त की हम बात कर रहे हैं, ब्रह्मन की बात कर रहे हैं, वो कैसा है, सर्वोच्च है, उससे ऊपर और कोई नहीं है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तैत्रीय उपनिषद कहता है ये तो वाचो निवर्तन्ते, वहां पहुंचकर आपकी वाणी और कुछ नहीं कर पाती है। अगर मान लो आप अगर समाधि के अंदर वहां पहुंच जाओ, और उस समाधि के बाद अगर आपको बोला जाए कि भाई वो समाधि के आप जहां पहुंचे थे उसका वर्णन करो, ये तो वाचो निवर्तन्ते, आपकी वाणी कुछ नहीं कह पाएगी। इसलिए ब्रह्मन का आज तक किसी ने निर्देशन नहीं कर पाया, उसकी कोई डिफिनीशन नहीं है। और जितने निर्गुण निराकार, ये तो खाली इंडिकेटर हैं, हम यहाँ पर सब गुण देखते हैं इसलिए वो निर्गुण है, यहाँ सब हम आकार देखते हैं, रूप देते हैं, उसको अरूप कह देते हैं, ऐसा हम कह देते हैं। यहाँ सब मरने वाली चीज देखते हैं, उसको हम नित्य कह देते हैं, ऐसा है। अच्छा, और वो कभी जो है इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता, हमने वेदांत में भी नहीं देखा है, कभी भी वो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आएगा, मन वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, मगर मन के द्वारा वहां पहुंचा जाता है, मन के द्वारा ही वहां पहुंचा जाता है। और वो कैसा है, सच्चिदानंद सनातन नित्य है, अनादि है। वो अव्यक्त जो है वो नित्य है, और प्रकृति वाला अव्यक्त वो परिवर्तनशील है, नाशवान है वो। प्रकृति का जो अव्यक्त है वो नाशवान है। अगर आप भागवत क्लास कर रहे होंगे तो ये प्रकृति के अव्यक्त को कपिल भगवान ने प्रधान कहा, प्रधान, उनको एक शब्द दिया प्रधान। और वो प्रधान जो क्या है, वो अव्यक्त है। उस प्रधान से फिर महत्त्व वगैरह आते हैं, महत्त्व आएगा, अहंकार आएगा, फिर तन्मात्रा आएगी, तन्मात्रा के बाद में स्थूल पंच महाभूत आएंगे, फिर उस स्थूल पंच महाभूत और तन्मात्रा से अहंकार से ये सारा विश्व बन गया, हमारा शरीर भी बन गया, सब कुछ बन गया। तो ये व्यक्त हो गया, जैसे ही महत्त्व आया वो व्यक्त हो गया। तो वहां पर कपिल भगवान कहते हैं कि वहां पर प्रधान को अव्यक्त कहते हैं प्रकृति, और प्रकृति को जो है व्यक्त को प्रकृति कहते हैं। इस तरह से उन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अच्छा, यह भाव वो परमात्मा सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति, वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप कैसा है, जितने भी जीव जीव हैं हिरण्यगर्भ तक ईश्वर तक, ये सब के सब नष्ट होने वाले हैं, सब नष्ट हो जाएंगे, मगर वो चेतन तत्व शुद्ध अहम ब्रह्मन वो नष्ट नहीं होता। तू मतलब विलक्षण, जो आगे अव्यक्त प्रकृति का कहा था उस अव्यक्त से ये भिन्न है, एकदम एकदम डिफरेंट है। तो यहां पर दो जो अव्यक्त वर्ड यूज किए गए हैं इस श्लोक के अंदर, एक अव्यक्त प्रकृति के कारण है जिसको कपिल भगवान प्रधान कहते हैं, दूसरा अव्यक्त जो यहां बताया गया है उस ब्रह्मन को इंगित किया जा रहा है, जिस ब्रह्मन को हम कहते हैं वो नित्य है, नित्य है। और प्रकृति और प्रधान दोनों ही दोनों नाशवीन पराधीन है और नाशवान है। प्रकृति पराधीन है और ब्रह्मन जो परम अव्यक्त ब्रह्मन है वो कैसा है, वो स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र है। हमने कई बार देखा है कि माया ब्रह्मन के बिना नहीं रह सकती, मगर ब्रह्मन माया के बिना रह सकता है। तो माया पराधीन हुई और ब्रह्मन स्वतंत्र है, ये डिफरेंस है, दोनों में भेद ऐसा है। हमारे कठोपनिषद ने भी इसको ऐसा कहा, महत परम अव्यक्तम, महत परम अव्यक्तम। महत तत्व तो आपको अब मालूम हो गया, महत कहां से आया, महत का परम जो है अव्यक्त है, जिसको हमने कपिल भगवान ने प्रधान कहा। और अव्यक्तात् पुरुष है पर, वहां कहते हैं अव्यक्त जो इसको हम प्रधान कहते हैं उससे भी परे एक पुरुष है, यहाँ पर कठोपनिषद में उसको पुरुष कहा, जिसको हम ब्रह्मन कहते हैं। अब उसके बाद पुरुषात् न परम किंचित, उस पुरुष के परे और कुछ नहीं है। अब इसके बाद नहीं पूछना कि पुरुष के ऊपर कौन है, न किंचित सा काष्ठा सा परागति, वो लिमिट हो गया, सा काष्ठा वो ब्रह्मन जो है वो लिमिट हो गया, और वही हमारी परम गति है, वही हमें चाहिए, वही हमें चाहिए। देखो हम कितने नजदीक आ गए हैं ब्रह्मन के, सोचो आप, केवल एक स्टेप बाकी है, ओनली वन स्टेप, सारी सीढ़ियां पार करके आ गए हम लोग, एक स्टेप आगे जाना है। न विनश्यति, उस परम को, उस अव्यक्त अव्यक्त अक्षर जिसको हम ब्रह्मन कहते हैं, वो कभी की उसका विनाश नहीं होता, ब्रह्मन अविनाशी है, बाकी सारी चीजें उसको छोड़कर सब विनाशी हैं। देखो इस श्लोक के अंदर लास्ट वर्ग आया ना, न विनश्यति, उसका विनाश कभी भी नहीं होता। अच्छा, अगर हम ये प्रकृति और प्रधान से परे उस अव्यक्त में पहुंच जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा विनाश होगा, हमारा भी विनाश नहीं होगा। देखो हमारा विनाश नहीं होगा, फिर क्या हमारा पुनर्जन्म होगा, नहीं, ब्रह्मन का जन्म कैसे हो सकता है, ब्रह्मन का जन्म फिर से होता है क्या, नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं है। देखो कितना साइंटिफिक है ये, कितना साइंटिफिक है, हमको वहां पहुंच जाना है, वहां पहुंच जाना है। तो अभी हम किस जगह पर हैं, हम लोग अभी व्यक्त स्टेट में है, प्रकृति की व्यक्त स्टेट में है। हम आए कहां से, अव्यक्त से आए, अव्यक्त क्या है, और अगर हम एक छलांग लगा के उस प्रकृति के अव्यक्त से उससे परे जो अव्यक्त है जो ब्रह्मन है उसके पास पहुंच जाए तो हमारा भी विनाश नहीं होगा। नेक्स्ट
अव्यक्त अक्षर इत्युक्त अव्यक्त अक्षर इत्युक्त तमाहु परमां गतिं तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तद्धाम परमं मम अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम
अव्यक्त अक्षर है इति उक्त। अव्यक्त अक्षर नाम से जिसको कहा गया, यहाँ पर अव्यक्त अक्षर क्या हुआ, ब्रह्मन, ब्रह्मन परमात्मा। अव्यक्त अक्षर इति उक्त तम आहु गतिम परमाम, तो जो लोग इसको जानने वाले हैं वो कहते हैं यही परम गति है, तम आहु इसी को परम गति कहते हैं। अव्यक्त अक्षर तक पहुंच जाना ही परम गति है, अव्यक्त अक्षर तक पहुंच जाना ही परम गति है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, उसको प्राप्त करने के बाद में फिर आपको वापस नहीं आना है, वापस नहीं आना है। तद धाम परम मम, वही मेरा परम धाम है, वही परम धाम है। तो अव्यक्त अक्षर इति उक्त, वह अव्यक्त अक्षर नाम से प्रसिद्ध है, अव्यक्त अक्षर के नाम से बोल रहा। अच्छा, बृहदारण्यक उपनिषद में भी ऐसा ही आया, एतद् वै तत् अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदति, ब्राह्मण लोग उसी को अक्षर कहते हैं, अक्षरम। तम आहु परमाम गतिम, श्रुति उपनिषद में भी ऐसा कहते हैं कि वही परम गति है और उसके ऊपर कोई नहीं है। श्रुति मतलब उपनिषद, वेद कहता है, कहाँ लिखा है, कठोपनिषद में लिखा है। क्या लिखा है, सा काष्ठा सा परागति, अभी आपको हमने बताया सा काष्ठा, काष्ठा मतलब लिमिट, बस उसके ऊपर और कुछ नहीं है। सा परागति, वही हमारा गंतव्य स्थल है, वही हमारा लक्ष्य है, वही हमने पहुंचना है। और ये कहाँ है, बोले ब्रह्मलोक से परे है। ब्रह्मलोक से परे, हाँ क्यों ब्रह्मलोक से परे, अरे ब्रह्मलोक तो सब बना हुआ है ना, पंच महाभूत का बना हुआ है, काल में सीमित है, टाइम में सीमित है, और इससे परे जो है वो अव्यक्त अक्षर है। लोग योगी वहां जाकर वापस नहीं आता, यम प्राप्त न निवर्तन्ते, वहां पहुंचने के बाद फिर वापस नहीं आता। अच्छा, वापस नहीं आता है, कहां पर वो हमारे भीतर है, हमारे भीतर आत्म रूप में वो स्थित है। कैसे उसे पाए, अब प्रश्न आ गया ना, कैसे पाए। तो देखो कठोपनिषद और मुंडक उपनिषद में एक ही वाक्य कहा गया है, यमे वैसे ब्रुनुते तेन लभ्य, जिसने उसको चाहा उसको मिल गया, जिसने उसको चाहा कि मेरे को मिलना चाहिए उसको मिल गया। मगर आपको चाहना होगा ना, आप नहीं चाहोगे फिर नहीं मिलेगा, चाहने से मिल जाएगा। इसी को नानक भी कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया। कई बार मैं कहता हूं कोई फेल्योर नहीं है, आप में से कोई भी फेल नहीं करेगा, आप चेष्टा करो मिल जाएगा। क्यों, अरे आपके पास ही है भाई, हमको मालूम नहीं है, बस यही हमारी कमी है। जैसा जो है शास्त्र कहते हैं, गुरु कहते हैं, जिस तरीके से भगवान बताते हैं कि इस तरीके से चलो आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा आपको, आप चेष्टा करते रहो मिल जाएगा आपको, जरूर मिलेगा। तद धाम परम मम, वह धाम मेरा है। अच्छा, वो धाम परमात्मा का है। और जो वहां पहुंच जाता है फिर वापस संसार में नहीं आता, फिर संसार में नहीं आता। हाँ, और इस धाम को छोड़कर आप और दूसरे किसी धाम में पहुंच जाओ तो वापस आना होगा। क्यों? क्योंकि देखो नित्य वस्तु केवल एक है, इसलिए वो धाम एक होगा, दो नहीं है। ब्रह्मन एक है, नित्य एक है, इनफाइनाइट रियलिटी ट्रुथ एक है, दो इनफाइनाइट हो नहीं सकते। तो उस इनफाइनाइट ट्रुथ को छोड़ के आप जहां कहीं भी पहुंच जाओ आपको वापस आना है, सीधा सीधा बात। देखो सीधे समझ में आ गया ना पूरा ठीक से? उस अव्यक्त अक्षर को छोड़कर जो कि नित्य है सनातन है, उसको छोड़ के आप जिस कहीं भी जगह पर जाओगे वहां से वापस आना है। क्यों? कि ब्रह्मन तो एक है, ब्रह्मन एक है, उस ब्रह्मन को छोड़ के आप जहां भी जाओगे वो अनात्म वस्तु में पहुंचोगे आप, वो काल में सीमित होगी। एक ब्रह्मन ही ऐसा है जो काल में सीमित नहीं है। तो ब्रह्मन को छोड़कर आप जहां भी जाओगे वहां से आपको वापस आना है। अच्छा, अब परम धाम की प्राप्ति का उपाय बताइए भगवान, कैसे उसे पाएं? भगवान बताते हैं 22वें श्लोक में।
पुरुषस्य परः पार्थ,
पुरुषस्य परः पार्थ,
भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया,
भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया,
यस्यान्तस्थानि भूतानि,
यस्यान्तस्थानि भूतानि,
येन सर्वमिदं ततम्,
येन सर्वमिदं ततम्,
पुरुषस्य परः पार्थ, भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, यस्यान्तस्थानि भूतानि, येन सर्वमिदं ततम्।
देखो यहां पर भगवान कहते हैं पार्थ, हो ए अर्जुन, यस्य अंतस्थानी भूतानी, यस्य माने उस परमात्मा में, अंतस्थानी अंतर्गत, भूतानी सारे प्राणी हैं। तो उस ब्रह्मन में, उस अव्यक्त में सारे प्राणी हैं। अच्छा, येन इदं सर्वं ततम्, येन उस परमात्मा से, उस सच्चिदानंद से, उस ब्रह्मन से सारा जगत जो ये यह इदम इदम करके हम जानते हैं वो परिपूर्ण है। तो वो ब्रह्मन जिसके अंतर्गत सारे प्राणी हैं, और वो ब्रह्मन जो कि सारे जगत में व्याप्त है। अच्छा, सह पर वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष, जिसको हम पुरुष यहां पर भगवान कहते हैं, वो तू तू अनन्या भक्त्या लभ्य है। उसको आप जो है अनन्य भक्ति के द्वारा पा सकती है, अनन्य भक्ति के द्वारा पा सकते हैं। तो परम धाम की प्राप्ति का उपाय भगवान बताते हैं, उस अव्यक्त ब्रह्मन के तक अगर आपको पहुंचना है तो क्या करना होगा? भक्त्यालभ्य तू अनन्या, अनन्य भक्ति से आपको मिल जाएंगे। अच्छा, यस अंतस्थानी भूतानी, यस अंतस्थानी भूतानी मतलब सारे 14 लोक जितने भी प्राणी हैं वो परमात्मा के भीतर है, भगवान से अलग नहीं है, सब परमात्मा के भीतर है, सब परमात्मा के भीतर है। आप अपने आप को ऐसा समझो कि आप परमात्मा के हाथ के ऊपर आप बैठे हो, आपका शरीर परमात्मा में है, परमात्मा नहीं रहेंगे तो शरीर नहीं रहेगा। वेदांत की भाषा में अगर कहें, अगर ये परमात्मा अपना एग्जिस्टेंस अपना सत नहीं देगा तो ये शरीर रह नहीं सकता, एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, एग्जिस्टेंस केवल भगवान के पास है, उस परमात्मा के पास है, उस ब्रह्मन के पास है, और किसी के पास वो एग्जिस्टेंस नहीं है। इसीलिए माया पराधीन है, माया को एग्जिस्टेंस वहां से चाहिए रहने के लिए, हमें भी एग्जिस्टेंस उसी से चाहिए। वो आत्मा मेरे भीतर है, हम कहते हैं मेरे भीतर है, सही पूछो तो आत्मा के अंदर हम है, ऐसा नहीं है कि आत्मा मेरे भीतर है बाहर नहीं है। हम सब उस आत्मा या ब्रह्मन के अंदर स्थित हैं। यस अंतस्थानी भूतानी। अच्छा, ये न सर्वमिदम ततम, वह सर्व जगह व्याप्त है। अगर सारे जगत में भगवान है तो हम ये भी कह सकते हैं कि सब जगह व्याप्त है, और वेदांत की भाषा में हम कैसे कहते हैं कि वो सब जगह व्याप्त है, तो प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस से वो सब जगह है। सब जगह इजनेस 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 लगा हुआ है, कंप्यूटर इज, स्पीकर इज, जेरोक्स मशीन इज, सब जगह है, सन इज, मून इज, स्काई इज, सब जगह इजनेस है, या मैं एमनेस है, ये सब जगह है। ये न सर्वम इदम ततम पुरुष स पर, पर विश्वे श्लोक में भी कहा गया है, वह परमात्मा व्यक्त एवं अव्यक्त प्रकृति से परे है। देखो आप कंफ्यूजन में नहीं जाना, अव्यक्त दो हो गए, एक प्रकृति का अव्यक्त होता है और दूसरा अव्यक्त वो ब्रह्मन है, वो सुप्रीम परमात्मा है, जिसको यहाँ पुरुष कहा गया है। डिफरेंट जगह नाम दूसरे दे दिए हैं, मगर तत्व तो उसी को निर्देश किया जा रहा है, जिसको हम ब्रह्मन कहते हैं, या यहाँ परमात्मा कहा या पुरुष कहा, तो वो पुरुष कहाँ है, प्रकृति से परे है। प्रकृति किस किस्म की है, दो किस्म की है, अव्यक्त व्यक्त। तो इसमें जीव क्या कहते हैं, जीव जो है अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त व्यक्त होते रहते हैं, खाली मिलियन ऑफ टाइम्स हम जीवन अपना जन्म ले चुके हैं, मिलियन होते रहते हैं, अबस लेते रहते हैं। मगर अगर उसके आधार में, उसके परे जो पुरुष है उसको हम जान लें, तो इस प्रकृति के बाहर निकल जाएंगे, फिर हमें जन्म नहीं लेना है। अच्छा, पुरुष से पर, वो जो है पुरुष उस अव्यक्त और व्यक्त प्रकृति से परे है। पुरुष की परिभाषा क्या है, पुरुष है नाथ, पुरुष है जो पुरी के अंदर रहता है, सोया हुआ है, वो पुरुष है। पुरी किसको कहते हैं, तो गीता में आया है नवद्वारे पूरे देही, नौ द्वार हैं, सात द्वार यहां हैं और दो द्वार हमारे नीचे हैं, इसको नवद्वार पुरी कहा गया। उपनिषद में ग्यारह द्वार भी कहा है, तो नौ में सात ऊपर है, दो आंख दो कान दो ये, एक मुंह सात हो गए और दो नीचे नौ, तो ग्यारह कैसे होते हैं, एक नाभि को एक ब्रह्मरंध्र को जोड़ दीजिए, उसमें नाभि भी एक द्वार है, ब्रह्मरंध्र भी एक द्वार है, तो ग्यारह द्वार भी इसको कहा गया है। अच्छा, तो आप कहते हो कि पुरी सैनाथ पुरुष है, ये कैसे हुआ, तो तैतरी उपनिषद में आता है यत् सृष्ट्वा अनुप्राविष्टः, यत् सृष्ट्वा सृष्टि बना के वो उसमें घुस जाता है, इसको हम लोग प्रवेश श्रुति कहते हैं, आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, भगवान ने सृष्टि बनाई और उसके बाद में उसमें घुस गए, घुस गए मतलब उसके भीतर है, पुरुष के भीतर है, हर व्यक्ति के भीतर है, हर जीव के भीतर है। अच्छा, और एक पुरुष की परिभाषा है पूर्णत्वात् पुरुष है, जो पूर्ण है उसको पुरुष कहते हैं, हम लोग सब अपूर्ण है, जो पूर्ण है, पूर्ण किसको कहते हैं, जिसको और कोई चीज की दरकार नहीं है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो पूर्ण है, बाकी उसको छोड़कर सब अपूर्ण है। और वो पुरुष कैसा है, साकाष्ठा सा पराम गति, वो उसकी अंतिम स्थिति है, उसके ऊपर और कोई नहीं है, जिसने सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है उसको हम पुरुष कहते हैं। अच्छा, भक्त्या लभ्य तो अनन्या, भक्त्या लभ्य अनन्या का मतलब अनन्य भक्ति से वह परम पुरुष को प्राप्त होने योग्य, अनन्य भक्ति, एक निष्ठ भक्ति इसको कहेंगे, अनन्य भक्ति से। अर्जुन का सातवां प्रश्न था, प्रयाण काले च कथम गिये असि निया आत्म भी, युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय किस प्रकार जानने में आते हैं। तो भगवान ने सातवें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दिया, देखो अब उसकी हम एक समरी बनाते हैं। पांचवें श्लोक में कहा, अंत काले च माम एव स्मरण मुक्ता कलेवरम, एक अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़ता है। चौदहवें श्लोक में भगवान ने कहा, अनन्य चेता सततम यह माम स्मृति नित्य सह। अनन्य चेता मतलब मन और दूसरी किसी तरफ नहीं जाता है, और नित्य सह सततम दीर्घ काल तक मेरा स्मरण करता है। और यहाँ 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भक्ता लभ्य तो अनन्या, भक्ति के द्वारा भी यहाँ पा सकते हैं उसे। तो ये भक्ति क्या है, प्रेम लक्षण या परम प्रेम रूपा, नारद भक्ति सूत्र में भी ऐसा ही आता है। भक्ति क्या है, परम प्रेम रूपा है। ये कैसी भक्ति है, अहेतु की अनिमित्तिक भक्ति, कोई हेतु नहीं, मुझे कुछ लेना नहीं है, अनिमित्तिक भक्ति। अभी पिछले मंगलवार हम पढ़ रहे थे कि भागवत में इसी को कपिल भगवान ने निर्गुण भक्ति कहा। निर्गुण भक्ति, हम कुछ भगवान से मांगते नहीं है मगर हम भगवान की पूजा करते रहते हैं, उनका स्मरण करते रहते हैं, किसी भी किस्म से 24 घंटे हम जो है भक्ति उनकी करते रहते हैं। हमने वहां 81 किस्म की भक्ति देखी, 81 टाइप्स। तो ऐसी भक्ति हम करते रहते हैं। अच्छा, अनन्या, अनन्या का मतलब क्या है, मन में विषयाकार वृत्ति नहीं है, सारा मन जो है भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। और ऐसा भक्त जब भगवान के पास पहुंचता है उसके बाद में उसकी क्रम मुक्ति होती है, उसकी क्रम मुक्ति होती है। भगवान उसको फिर बताते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। ये अध्याय पूरा का पूरा अध्याय उपासना नंबर 1, उपासना नंबर 2, उपासना नंबर 3 सब क्रम मुक्ति की उपासना है। अच्छा, अनन्य का माने यह भी हम कर सकते हैं कि भगवान और मुझ में कोई भेद नहीं है। भगवान ने कहा है ज्ञानी मेरी आत्मा है, आगे आ चुका है सातवें अध्याय में, ज्ञानी तू आत्मा भी मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, ज्ञानी और ब्रह्म में फर्क नहीं होता, एक ही है। तो क्रम मुक्ति में भी जीव ब्रह्म एक का ज्ञान दिया जाता है, ये जीव ब्रह्म एक तत्वमसी, ये ज्ञान वहां भी दिया जाएगा। कौन देगा वहां, वहां आपको भगवान देंगे, वहां भगवान देंगे। तो ज्ञान आपको दो जगह मिल सकता है, एक तो इस लोक में जहां आप बैठे हुए हो, और एक अगर आप चाहते हो कि हमको जो है लंबा टूर करना है ब्रह्म लोक में जाएंगे, ठीक है, उपासना नंबर 1 में राजयोग भक्ति करो, राजयोग प्लस भक्ति, वो नहीं पसंद आ रहा है तो फिर उपासना नंबर 2 करो, राजयोग प्लस उपासना या भक्ति प्लस ओम का आलंबन, वो भी नहीं आपसे बैठता है, नहीं जमता है, तो आप जो है उपासना नंबर 3 करो, भक्ति करो। कैसी भक्ति होनी चाहिए, नित्य सह सततम, नित्य सह मतलब दीर्घ काल तक, सततम मतलब निरंतर। अब आपको 3 उपासना क्लियर हो गई, अब 3 उपासना से आप वहां पहुंच गए, पहुंचने के बाद क्या होगा, आप क्या मुक्त हुए, नहीं नहीं अभी मुक्ति नहीं हुई, अभी 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 हम पहुंचे हैं, अभी तो आपको ज्ञान बाकी है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। हाँ, चॉइस आपकी ये है कि ज्ञान आपको यहां लेना है, मर्जी आपकी है, ज्ञान आपको वहां जाके लेना वो भी मर्जी आपकी, आपकी चॉइस है। आगे भी हमने आपको पढ़ के बताया ना कि जिसको चॉइस जिसने चुना उसको मिल गया, आपने चाहा तो आपको मिल जाएगा, जो नहीं चाहता नहीं मिलेगा उसको। अच्छा, और हमने विवेक चूड़ामणि में भी देखा कि हम जब जो है आत्मा का अनुसंधान करते हैं, आत्मा के बारे में जब चिंतन करते हैं, वो भी अनन्य भक्ति है, अनन्य भक्ति है, अनन्य भक्ति। जब हम विवेक चूड़ामणि क्लास में हम लोग जब डिस्कशन करते हैं तो वो 1 घंटे तक जो है अनन्य भक्ति होती है, केवल ब्रह्मन का ही चिंतन होता है और कुछ नहीं होता है। तो इसलिए भक्ति से आप ज्ञान में जाइए, ज्ञान से भक्ति में जाइए, एक ही बात है, भक्ति करके ब्रह्म लोक तक पहुंच जाए और वहां जाके ज्ञान ले लें, भक्ति के बाद ज्ञान। या ज्ञान ले लें और आपको पता लग जाए कि अरे वो तो मालिक है हमारे, फिर तो आप उसकी भक्ति करेंगे ही करेंगे, उससे बड़ा तो कोई और है ही नहीं, तो भक्ति जो है अपने आप होगी। अनन्य भक्ति से हम परमात्मा के साथ पास पहुंच सकते हैं। अच्छा, अब क्रम मुक्ति का मार्ग क्या है? क्रम मुक्ति का मार्ग क्या है? जो भक्ति है उपासना द्वारा भगवान तक पहुंच जाते हैं उनका क्या होता है, क्या होता है? देखो यहां पर अब दो मार्ग बताने वाले हैं भगवान। अर्जुन का प्रश्न का प्रश्न जो था उसका उत्तर खत्म हो गया, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भगवान दे रहे हैं। अर्जुन ने केवल यही प्रश्न किया था कि नित्य युक्त वाले प्रयाण काल में कैसे आप जाने जाते हैं, ये मेरे को बता दो। उसने तो ये नहीं पूछा था कितने मार्ग होते हैं, क्या क्या होता है, मेरे को और डिटेल बताओ, ऐसा नहीं कहा था। भगवान जो है हमें बताते हैं। अच्छा, भगवान क्या कहते हैं कि देखो दो मार्ग है, एक मार्ग है शुक्ल मार्ग, एक है शुक्ल मार्ग जिसे हम अपुनरावृत्ति मार्ग या अर्ची मार्ग या अनावृत्त मार्ग या उत्तरायण या देवयान कहते हैं। इतने नाम है एक ही चीज के, शुक्ल मार्ग के। और दूसरा क्या है? दूसरा कृष्ण मार्ग है या धूम्र मार्ग है, पुनरावृत्ति मार्ग है, आवृत्ति मार्ग है या दक्षिणायन मार्ग है, या उसको पितृयान भी कहते हैं। एक ही वस्तु के, एक ही गंतव्य स्थल के दो नाम है, एक ही पथ के दो नाम है, ना दो पथ के इतने नाम है पर्यावर्ती मैंने बताया। तो शुक्ल मार्ग, अपुनरावृत्ति मार्ग, अर्ची मार्ग, अनावृत्त मार्ग, उत्तरायण मार्ग या देवयान, कृष्ण मार्ग के धूम्र मार्ग, पुनरावृत्ति मार्ग, आवृत्ति मार्ग, दक्षिणायन मार्ग या पितृयान। ठीक है, अब भगवान निर्णय करते हैं मार्ग का, मार्ग हमारे हाथ में नहीं है, भगवान निर्णय करते हैं। कैसे निर्णय करते हैं भाई बताओ, कैसे निर्णय करते हैं भगवान? तो भगवान करते हैं जो निष्काम कर्म करता है, भक्ति उपासना करते हैं, वो शुक्ल मार्ग से प्रस्थान करते हैं। जो निष्काम कर्म करते हैं, भक्ति उपासना करते हैं, वह शुक्ल मार्ग से प्रस्थान करते हैं। जिन्होंने निष्काम कर्म किया, जिन्होंने कर्म योग किया, जिन्होंने भक्ति की, जिन्होंने उपासना किया, मगर ज्ञान नहीं लिया, यहां पर यहां ज्ञान नहीं लिया, वो शुक्ल मार्ग से जाएंगे। और जिन्होंने साकाम करते हैं, साकाम कर्म करते हैं, इष्टापूर्त कर्म करते हैं, वह कृष्ण मार्ग से जाते हैं, कृष्ण मार्ग से जाते हैं। अच्छा, तो भगवान अब जो है इस मार्ग के बारे में बताने जा रहे हैं। 23वां श्लोक,
यत्र काले त्वनावृत्तिम,
यत्र काले त्वनावृत्तिम,
आवृत्तिं चैव योगिनः, आवृत्तिं चैव योगिनः, प्रयाता यान्ति तं कालं, प्रयाता यान्ति तं कालं, वक्ष्यामि भरतर्षभ, वक्ष्यामि भरतर्षभ, यत्र काले त्वनावृत्तिम्, आवृत्तिं चैव योगिनः, प्रयाता यान्ति तं कालं, वक्ष्यामि भरतर्षव।
भगवान कहते हैं ओ भरतर्षव, ओ अर्जुन, यत्र काले, यत्र जिस काले, यहाँ काले का मतलब मार्ग है, मार्ग, यत्र काले। अच्छा, प्रयाता, प्रयाता मतलब शरीर त्याग करता है, शरीर त्याग करता है। अच्छा, तो शरीर त्याग करके कौन करता है? योगी न, योगी जन जो प्रयास कर रहे हैं। तू, तू मतलब तो अनावृत्तिम, अनावृत्तिम न लौटने वाला मार्ग, अनावृत्तिम जिससे वापस नहीं आते हैं, और आवृत्तिम वापस लौटने वाला गति या मार्ग। अच्छा, फिर एव मतलब और यान्ति प्राप्त होते हैं। तम कालम बच्छामी, तम कालम उस कालम मतलब मार को मैं कहूंगा। तो भगवान यहां पर दो मार का नाम लेते हैं, एक अनावृत्ति मार्ग है जिससे आदमी लौटता नहीं है, और दूसरा आवृत्ति मार्ग है जिससे लौटता है। इन दो मार्गों की चर्चा भगवान करने वाले हैं। तो हे अर्जुन, जिस काल माने मार्ग में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति मतलब अनावृत्तिम और वापस लौटने वाली गति आवृत्तिम को ही प्राप्त होते हैं, उस काल या मार्ग को कहूंगा। उस मार्ग को भगवान कहने वाले हैं। क्या है वो मार्ग? यत्र काले प्रयाता योगिन, योगिन मतलब योगी लोग, जिस मार्ग से शरीर त्याग कर गए हुए। देखो यहां पर जो है, इसको जब हम काल कहेंगे ना, तो यहां पर हमें पकड़ना होगा काल अभिमानी देवता, काल अभिमानी देवता यहां पर लेना होगा। अगले श्लोक में भगवान बताएंगे अग्नि ज्योति शुक्ल उत्तरायण ये सब कहेंगे, ये सब के सब जो है देवता हैं, एक एक देवता हैं। इन सबको काल देवता या मार्ग देवता कहते हैं। इन देवताओं का भी पावर है और इनके क्षेत्र निर्धारित हैं। ये देवता हैं और उनके क्षेत्र भी निर्धारित हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, आप कभी एक किसी बीजी एयरपोर्ट में पहुंचते हो और आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है, केवल आधे घंटे का समय है। तो आप अगर एक इंटरनेशनल फ्लाइट में, मान लो हीथरो में पहुंचे, पहुंचे आपकी फ्लाइट जो है आधे घंटे में जो है, लंदन से आपको आना है शिकागो, तो उस फ्लाइट में हो सकता है कुछ मिनियापोलिस के होंगे, कुछ शिकागो के होंगे, कुछ इधर के जाने होंगे, कुछ उधर के जाने होंगे। तो वहां पर जो है एयर होस्टेस या एयरप्लेन के, एरोप्लेन एयर कंपनी के जो है एजेंट खड़े रहते हैं। तो वो कहेंगे शिकागो 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 शिकागो, मतलब उधर निकलने वाला शिकागो वाला का एक ग्रुप बना लेंगे, दूसरी जगह का आधे घंटे वाला दूसरा। ये अभिमानी देवता है, ये देवता खड़े हैं वहां पर, इनको पकड़ लो, इनको पकड़ के इनको यहाँ बैठाना है, इनको इस मार्ग से जाना है, आपका वो उधर इस गेट में जाना है, इनको इधर गेट में जाना है। अदर बार आए कंफ्यूज हो जाएंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, कहाँ है क्या है नहीं है। यहां तो हमने नहीं देखा है, मगर हमको लंदन का अनुभव है, वहां पर ऐसा होता था, यहां भी किसी जमाने में होता होगा। अच्छा, मृत्यु का जो समय है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, एवं हम अपनी वृत्तियों का भी कंट्रोल नहीं कर पाते उस टाइम में। मृत्यु के समय कोई कंट्रोल नहीं है मन के ऊपर, हमारी वृत्ति, हमारी इंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसीलिए आप देखेंगे जो हमारे जो है वृद्ध लोग होते हैं, उनका जो है कंट्रोल नहीं रहता, बोलते अब जो है हमारा जो है यूरिन पर कंट्रोल नहीं है, स्टूल पर कंट्रोल नहीं है, कोई रह ही नहीं जाता कुछ कंट्रोल। सारी इंद्रिया तो पैक कर रही है ना, वो पैकिंग शुरू हो गई 40 साल की उम्र से, अब वो अंतिम अवस्था पैकिंग की चल रही है, तो कंट्रोल कहां से रहेगा, कंट्रोल नहीं रहता है। तो जो आपका पूर्व अभ्यास योग किया हुआ है, उस अभ्यास योग के हिसाब से आपके मन के अंदर वो वृत्तियां चलती रहती हैं। अगर आपने भगवान का नाम सदा स्मरण करते रहते हैं तो भगवान का नाम आएगा। अगर आप अपने पुत्र का नाम अगर याद करते रहते हैं सारा जीवन, तो पुत्र याद आएगा। तो प्रयाता योगी ने मना, योगी माने योगी जिसने साधना या उपाय किया है, योग किया है, उसने केवल कर्म और उपासना की है, उसने ज्ञान नहीं दिया, केवल कर्म और उपासना की है, तो वो कहां जाएगा? वो साकाम है, वो कृष्ण मार्ग से जाता है और वापस आना पड़ता है, उसको हम आवृत्ति मार्ग कहते हैं। और जिसने कर्म और उपासना की, तो जिसने साकाम किया, साकाम कर्म क्या है? आपने यहां पर ज्योतिष होम किया कि मुझे स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है, तो ये साकाम हुआ ना, अपने लिए स्वर्ग जाना है, थोड़ी ना और किसी को साथ लेके जा रहे हो, नहीं अपने लिए। तो वहां स्वर्ग से जाके फिर क्या करना होगा? अब वापस आना होगा, ये साकाम हो गया। अगर आप निष्काम कर्म करते हो और उपासना भी की, तो आप शुक्ल मार्ग से जाओगे। तत्कालम बच्छामी भरतस्व, भगवान वो मार्ग बताने जा रहे हैं। अच्छा, भगवान दोनों मार्ग आवृत्ति अनावृत्ति मार्ग बताएंगे, ताकि अनावृत्ति मार्ग की महिमा लोगों को पता लग जाए कि अनावृत्ति मार्ग को ही हमको चूज करना चाहिए जहां से वापस नहीं आना है। दोनों मार्ग बताने का मतलब क्या है कि आप समझ जाओ कि आपको किस मार्ग से जाना है। क्या आप वापस जाना चाहते हो, आना चाहते हो, तब साकाम कर्म करो जो हम कर रहे हैं अभी, जो अभी कर रहे हैं वो करते रहो, पुनरावृत्ति होती रहेगी, आप चलता रहेगा साइकिल। और अगर साइकिल से निकलना है तो आपको निष्काम काम करना होगा। भगवान कहते हैं करना होगा, बिना किए मुक्ति नहीं होगी, मर्जी आपकी है, आप शुरू करो या ना करो। भगवान ने अर्जुन से कर्म योग करा के तब उसे छोड़ा, कर्म योग करा कर तब उसको छोड़ा, तब उसकी मुक्ति हुई है, तब उसका ज्ञान बैठा है। हम भी अगर करेंगे तब जो है वो ज्ञान बैठेगा। अच्छा, अब उसके बाद में पहले भगवान लेंगे शुक्ल मार्ग, तो शुक्ल मार्ग को हम अगले दिन देखेंगे, आज तो समय नहीं है, शुक्ल मार्ग देखेंगे, फिर कृष्ण मार्ग के बारे में बताएंगे भगवान, और देखेंगे फिर, और फिर निश्चित करेंगे किस मार्ग में जाना है। अभी भी समय गया नहीं है, साधना जारी रखनी होगी। ओ
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।